यहां से अब अगला हिस्सा जो शुरू हो रहा है पारे के अंत तक, ये फिरका वारियत के बारे में समझ लीजिए। आज उम्मते मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा रोग जो है ये फिरका वारियत है। तसल्ली नहीं होती लोगों की जब तक लोग अपने आप को किसी फिरके और गिरोह से ना जोड़ दें। यही चीज कल यहूद और नसारा में थी। शुरू में मैंने अर्ज किया कि लफ्ज यहूदी एक फिरका वाराना नाम है, लफ्ज नसरानी एक फिरका वाराना नाम है। इसमें निस्बत किससे जुड़ती है? इंसानों से। यहूदता से निस्बत हुई तो यहूदी हो गए, नसारा जगह से हुई तो नसरानी हो गए। इस्लाम क्या चाहता है कि हम सब निस्बतों से पाक हों। बस आप देखिए कि हम कौन है मुस्लिम, हम मुहम्मदी भी नहीं है। पिछले मजाहब की तरह देखे तो हमें नबी सल्लम से निस्बत के साथ मोहम्मदी होना चाहिए था। वी आर नॉट मोहम्मडंस, वी आर मुस्लिम। मुस्लिम किसके साथ निस्बत है? अस्सलाम, अल्लाह का नाम है। तो यहां से अब आप पढ़िए और दिल में चुपके चुपके दुआएं करें कि अल्लाह आज उम्मत से ये फिरका वारियत खत्म कर दे। आज दुश्मन हमें मारने पर तैयार है सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान हैं और हम छोटे छोटे गिरोहों पर लड़ रहे हैं। हम किसी दूसरे गिरोह वाले से तावुन नहीं करते, हम उनको अपनी जगह नहीं देते, हम उनकी किताबें नहीं पढ़ते सिर्फ इस सोच के साथ कि ये हमारे फिरके से अलग हैं। ये चीज मुसलमानों की कुव्वत और ताकत को खत्म कर रही है। तो फरमाए वकालत यहूद लैसत النصارى على شيء। यहूद कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं और ईसाई कहते हैं कि यहूद के पास कुछ नहीं, यानी आपस में लड़ते हैं, दूसरे को कुछ समझ ही नहीं रहे, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। यानी अल्लाह कह रहे देखो ये किताब पढ़ने वालों का अदब, ये इनका जरा मियार तो देखो। और आज भी आप सब इस चीज को अपने दिल से रखें, कोई किसी फिरके और मसलक से हो आपने उनकी इज्जत करनी है। हक समझ आता है मान लीजिए, लेकिन कभी किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी मसलक की बुराई नहीं करनी। क्यों? अल्लाह जाने वो जाने आप क्यों बुरे बनते हैं? क्या हम आम इंसानों के साथ हर वक्त अटकते रहते हैं? तो अल्लाह ताला कहते हैं किताब पढ़े लिखों का, किताब पढ़े हुओं का अदब में उनका इखलाक बड़ा बुलंद होना चाहिए। और इसी किस्म के दावे इन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुबतला हैं, इनका फैसला तो अल्लाह कयामत के रोज करेगा। यानी दुनिया में कोई नहीं समझेगा कौन सच कौन झूठ, तो इसलिए इसको अल्लाह पे डाल दो। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के नाम पर कायम किए गए इबादत खानों में इसके नाम की याद से रोके और इनकी वीरानी के दर पे हो। ये नोट कीजिए, मस्जिदें कब वीरान होती हैं? जब फिरका वारियत होती है। आज मस्जिदें जुमे को तो बहुत आबाद है, बाकी दिनों में किधर है? वजह के फिरकों में पट गए लोग, दुनियादारी में पड़ गए और दीनदार जो है फिरकों में पड़े और दुनियादार दुनिया कमाने पे लग गए। कभी फजर पे आके नमाजियों को गिनिए तो जाई, और कभी ईशा की नमाजों में देखिए और जोहर में देखिए। ये आज उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि हमने मस्जिदों को खाली कर दिया। 5 वक्त की नमाज जो मस्जिद में पढ़ी जाती है जमात से उसको ऑप्शनल समझ लिया। चंद लोगों का काम के यहाँ जाए वो नमाजें पढ़े, हम तो कमाएंगे। हालांकि कमाइयां अबू अब्दुलरहमान बिन औफ भी करते थे, हजरत उस्मान भी बहुत बड़े ताजिर थे, अबू बकर सिद्दीक भी ताजिर थे। ये तसव्वुर ही नहीं था कि हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज आए और मर्दों के कदम मस्जिद की तरफ ना पलटे। यहाँ चंद लम्हे के लिए सोचते हैं, जमात के वक्त में कितने मर्द हमारे घर से मस्जिद की तरफ जाते हैं, कोई पढ़े भी तो कहते हैं घर में पढ़ ली। हालांकि जमात के साथ मस्जिद में पढ़ने का एक मकसद था, मुस्लिम कम्युनिटी डिवेलप होती है। दिन में 5 बार जब आप लोगों को मिलते हैं तो उनके हाल अहवाल की खबर होती है। तो आइए हम दुआ करते हैं, कम अज कम अपने बच्चों के लिए नियत कर लें। अगर शोहरों को आप अभी नहीं समझते कि आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बच्चों को 5 वक्त की जमात की आदत डालिए। यह आपका बहुत बड़ा एहसान होगा उम्मत मुस्लिमा पे। आने वाले वक्त में वही बच्चे अल्लाह के दीन की इतफाक के लिए निकलेंगे जो फजर पे मस्जिद में जाते हैं। आज फजर में मस्जिद के लिए नहीं जा रहे, कल अल्लाह ना करे दुश्मन आ जाए तो उसके दिफा के लिए निकलेंगे। तो ये तरबियत का एक तरीका होता है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फरमाए ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम ना रखें, अगर वहां जाएं भी तो डरते हुए। इनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखरत में बड़ा अजाब है। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे इसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है। ये जुमला जो है ये दूसरे पारे के शुरू से ताल्लुक रखता है कि किबलों की बहसों में पढ़ते हो, असल यह है कि दीन की हिकमत को समझो। इनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, अल्लाह ताला पाक इन बातों से। असल हकीकत यह है कि जमीनों आसमान की तमाम मौजूदात इसकी बादशाहत में है, सब के सब इसके मती हैं। वह आसमानों और जमीन को पहली बार पैदा करने वाला है और जिस बात का वो फैसला करता है इसके लिए बस ये हुक्म देता है, कुन हो जा, और वो हो जाती। इसको हाईलाइट करें। कभी कोई मुश्किल में फंसे हो, कोई काम अल्लाह से निकलवाना है, अल्लाह से कहें कि अल्लाह सो साहिबे कुन फयकून है, तू मेरी इस बीमारी पे, मेरे इस बच्चे की बीमारी पे सेहत का कुन कह दे, इस गुर्बत को, इस अफलास को ख़त्म कर दे। देखिए जब अल्लाह की कुदरत का आपको यकीन होता है ना, तो आपका हाल ऐसा है कि जैसे रिमोट कंट्रोल आपकी जेब में है, जब चलाया चीज़ चला लेंगे। अल्लाह के साथ इतना गहरा ताल्लुक़ रखिए कि अल्लाह की कुदरतों के ऊपर यकीन रखते हुए नामुमकिनात को मुमकिन में बदलने का यकीन आपको होना चाहिए। फिर फरमाया, नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं लाता। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, ऐसी ही बातें इनसे पहले के लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की ज़हनियतें एक ही जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियाँ साफ साफ नुमाया कर चुके हैं, इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्मे हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं, इनकी तरफ से तुम जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं। अगली आयत को हाईलाइट कीजिए, मैं सिर्फ तर्जमा पढ़ के गुजर जाऊं तो मेरा ख्याल है कि यह आयत आपको समझ आ जाएगी। वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिय मिल्लतहुम, यहूद और नसारा तुमसे हरगिज़ राजी ना होंगे, तुमसे कौन, मुसलमानों से, जब तक तुम इनके तरीके पर न चलने लग जाओ। दिस इज द ओनली थिंग दे विल बी प्लीज विद यू, कि तुम मुसलमान ना रहो। तो क्या कहना है, साफ कह दो क्या कि हुदल्लाही हुवल हुदा, कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बता दिया, वरना अगर इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि पढ़ने का हक है। दुआ कीजिए अल्लाह में इस किताब को पढ़ने का हक अदा करने वाला बना दे। वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जिसके साथ कुफर का रवैया अख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। तीसरी बार अब यहां वो ब्रैकेट क्लोज हो रही है जो वहां से बात शुरू हुई थी आयत 40 से। बनी इसराइल के 10 रुकू हमने पढ़े हैं। या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुमको नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। आज किसको दी थी अल्लाह ने, उम्मते मुस्लिमा को। और डरो इस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा, ना किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा, ना सिफारिश ही आदमी को फायदा देगी, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद पहुंच सकेगी। क्या पता चला कि बनी इसराइल का डिक्लाइन कब हुआ, जब उनके अंदर से आखरत के मामले में सही चीजें निकलकर खुशफहमियां रह गई। आज भी यही कहानी है। हम मुसलमानों के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह यह है कि आज हम आखरत को सही तरह नहीं समझे। यहाँ पे एक किरदार पूरा हुआ, फिर दोहरा देती हूँ। आदम और इबलीस के किस्से में दो चीज़ें थी, आदम से ख़ता हुई तौबा की, नदामत थी, इबलीस से ख़ता हुई अकड़ गया, तकब्बुर किया। अभी तक जो रवैया हमने पढ़ा ये इबलीसी रवैया था, कि जब गलती होती है अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं तो अपनी गलती कभी नहीं मानते। अब अगले हिस्से में एक मानने वाला, एक मुस्लिम किरदार, यानी मेरे और आपके लिए अब इस पारे में से रोल मॉडल। हर पारे में से हम एक रोल मॉडल लेंगे एज उम्मत मुस्लिमा इंशाल्लाह। पहले पारे के हीरो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आइए देखते हैं अल्लाह उनका कितने प्यार से जिक्र फरमाते हैं, और इनकी शख्सियत पे हम बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे। और अल्लाह के कलाम में जो है उसको पढ़ना मुझे लगता है कि और ज्यादा अच्छा लगता है बजाय कि हम कुछ कहें, इसलिए इनके ऊपर हम बातें अगले सबक में करेंगे जब इनका जिक्र आएगा। वज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात फातम्महुन, याद करो जब इब्राहिम को इसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो इन सब बातों में पूरे उतर गए। दुआ करिए अल्लाह जब तू हमें आजमाए तो हम भी पूरे उतरें, अल्लाह जो करने को कहे हम उसको कर लें, अल्लाह ताला जिससे तू रोके हम उससे रुक जाएं। तो उसने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। हाईलाइट करें, अल्लाह कब लीडर बनाएगा उम्मत मुस्लिमा को, जब हजरत इब्राहिम की सुन्नत में ये भी अल्लाह की हर बात को मानने लग जाएंगे। इब्राहिम ने अर्ज किया और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है, तो अल्लाह ने जवाब दिया मेरा वादा जालिमों से मुतल्लिक नहीं, यानी नबुवत या जन्नत विरासत में नहीं मिलती, ये आमाल से कमानी पड़ती है। अब जब अल्लाह ने इब्राहिम को चुना तो क्या किया, विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा कर दिया, नहीं, अल्लाह जिनको चुनता है उनसे अपने घर बनवाता है और अपने घरों को आबाद करवाता है और अपने घरों को साफ कराता है। सारे वॉलंटियर्स जहां से भी सुन रहे हैं एनीवेयर, वो इन आयतों को पढ़कर अल्लाह का शुक्र भी अदा करें اور دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اس جاب سے کبھی ہٹانا نہ، ہم تیرے دین کی خدمت کرتے ہی رہیں چاہے ہمیں باہر کھڑے ہو کر جوتوں کو سیدھا کرنا پڑے۔ یہ بہت آنر ہے، دیکھیے بڑی کمپنی میں جاب مل جانا ہی بڑی بات ہے، کیا پوسٹ ہے ہو کیئرس، آپ نام تو لے سکتے ہیں نا کہ میں فلاں کمپنی میں کام کرتی ہوں، تو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کون سی ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، یہ ہے مقام ابراہیم۔ اللہ آپ کو عمرے پہ لے کے جائے، حج پہ لے کے جائے، جب مقام ابراہیم کے پاس کھڑی ہوتی نا تو میرے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تو اپنے راستوں میں کھڑے ہونے والوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تو نشانیاں بنا دیتا ہے۔ آج میں اور آپ اگر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ کے پاس بہت جگہ ہے، لیکن آج جب ہم استقامت چھوڑ کر تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑک جاتے ہیں تو نہ جانے ہمارا اللہ کے پاس کیا مقام ہوتا ہے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی تھی۔ اب ذرا ابراہیم کی دعاؤں کی رنگ پہ آج امت مسلمہ کو کیا دعائیں مانگنی ہیں اس کو دہرائیے۔ ایک بک ہے فائنی قریب کے نام کی، آئی ڈونٹ نو سٹال پہ ہے کہ نہیں، اس میں ترتیب کے ساتھ دعائیں ہیں، یعنی جس ترتیب سے قرآن پاک میں آئی ہیں ویسے ہی ہیں، تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ ہر پارے کی دعائیں اس پارے کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ شروع میں آ کے ادھر اگر مل کے پڑھ لیں، گھر میں موقع ملے تو انشاءاللہ اس پورے دورے قرآن کے اینڈ پہ آپ کو پورے قرآن کی دعائیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ اگلی دعا جو آ رہی ہے یہ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانا ہے۔ ابراہیم نے محبت کی بات کی تھی، اللہ نے عدل کی بات کی کہ دنیا ان کو بھی دوں گا جو محنت کریں گے، کافر ہیں یا مسلمان، لیکن آخرت اس کو ملے گی جو محنت کرے گا اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا۔ وَإِذْ جَرَفَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ امیجن کیجئے، ایک مستری ہے اور ایک مزدور، اور دونوں باپ بیٹا ہیں، اور گھر کس کا بن رہا ہے؟ اللہ کا۔ تو دعا کرتے جاتے تھے، اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لے لیا، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، یہ نہیں کہا ایک چھوٹی سی ہمارے نام کی وہاں سلائیڈ ہی لگا دو، کوئی نیم پلیٹ لگا دو میڈ بائی اسماعیل، ربنا تقبل منا، کہ رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت نہیں ہے۔ آپ کتنے ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہوں اور دوسرا آپ کو قبول ہی نہ کرے تو کس کام کی بات ہے؟ دعا کریے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول کر لے، اور یہ خدمت ہماری آخری خدمت نہ ہو دین کے نام پہ، بلکہ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم اور متی فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا۔ یہ اب آپ کے لیے دعائیں ہونے لگی ہیں، جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ یہ کیا بات ہے، گھر بنا لیا، عبادت کے طریقے بھی خود ہی وضع کر لیتے۔ یہاں سے نوٹ کیجئے گا، ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ عبادت کے طریقے بنائے نہیں جاتے، مانے جاتے ہیں، فیبریکیٹڈ عبادت کو بدعت کہتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا ایک اور بہت بڑا ناسور ہے، سنتوں کو پیچھے ڈال کر، فرائض کو پیچھے کر کے من پسند کام کی نیکیاں کرتے ہیں جو صحابہ نے نہ کی، اللہ کے نبی نے نہ کی، تو عبادت کے طریقے مانے جاتے ہیں۔ ابراہیم کو یہ بات اچھی طرح پتا تھی، اور ساتھ ہی فرما دیا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ آج بھی یہی کرنا ہے، واللہ ہی آج امت مسلمہ کو اگر ہم سامنے لانا چاہتے ہیں تو کتاب کے ساتھ اس طرح کا گہرا تعلق کہ کتاب کی آیتیں پڑھنی آ جائیں، سننی آ جائیں، اس کی تفسیر سمجھ آ جائے، اور اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا آ جائے۔ اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اور تو بہت ہی قدرت والا اور حکیم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی باتیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے لاتا ہے، اور اگر ہم ان ساری باتوں کو پڑھیں اور کہ ہائے ابراہیم کتنے اچھے تھے، ہائے ابراہیم کتنے شان والے تھے، تو بات کافی ہوگی، بات इसके बाद हमें क्या कहना है कि अल्लाह जैसे इब्राहिम थे वैसे तू हमें बना। आप देखिए कि तकरीबन 4000 साल पहले की शख्सियत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन आज भी इनका जिक्र आता है तो ऐसे लगता है आज के दौर की शख्सियत है, क्योंकि जितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने उनको दी उतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें की। दुआ कीजिए कि आज उम्मत मुस्लिमा इन सारी आजमाइशों में पूरी उतरे और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं थी हम सब उसको लेकर चलें।